उन लोगों के नाम जिन्होंने अमरीकी दहशतगर्दों के हाथ अपनी जानें गंवाई। मार्च 1962 अमरीकी मुश्तरका फौज के कमांडर रेमन लेमिंचर ने वजीर दिफा रॉबर्ट मैकनमारा को एक तजवीज बनाम ऑपरेशन नॉर्थवुड पेश की। प्लान ये था कि गोंटानामो बे के अंदर और उसके अतराफ दहशतगर्दाना हमले करवा के क्यूबा को जिम्मेदार ठहराकर उस पर फौजी चढ़ाई की जाए। प्लान ये था क्यूबा के खिलाफ अफवाह फैलाना कि जासूसी रेडियो इस्तेमाल कर रहा है, क्यूबन दोस्तों के द्वारा बेस में हमले का ड्रामा करवाना, मेन दरवाजे पर हंगामा शुरू करवाना, बेस के अंदर गोला बारूद फोड़ना जिससे आग लग जाए, बेस पर मौजूद हवाई और पानी के जहाजों को साबोताज करना, बेस पर बमबारी करना, बेस के बाहर पानी का जहाज डुबोना, नकली जनाजे दफन करने का ड्रामा करना, मायामी फ्लोरिडा और वॉशिंगटन डीसी में आतंक फैलाना और आखिर में अपने ही बिना पायलट के जहाज को क्यूबा की सरहद में मार गिराना। जहाज के मुसाफिर एफबीआई एजेंट होंगे लेकिन कहा जाएगा कि वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एग्लिन एयरफोर्स बेस पर सीआईए के एक हवाई जहाज को मुसाफिरों के जहाज जैसा रंग लगाकर एक नकली सिविलियन जहाज बनाना, उस नकली जहाज को असली से बदलकर उस पर मुसाफिर सवार करना, असली जहाज को बिना पायलट जहाज बना देना। ये दोनों जहाज फ्लोरिडा के साउथ में जाएंगे। नकली जहाज एग्लिन एयरफोर्स बेस पर मुसाफिरों को उतार कर अपने असली मकान पर लौट जाएगा। असली जहाज जो बिना पायलट का बन चुका है वो क्यूबा की तरफ रवाना होगा। क्यूबा के समुद्री इलाके में दाखिल होने के बाद उससे सिग्नल मिलते ही उसे रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया जाएगा। इस प्लान को मैकनमारा खारिज कर देता है और कुछ महीनों के बाद प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी लेमिंचर को मुश्तरका फौज के कमांडर के ओहदे से हटा देते हैं। 1 दिसंबर 1984 एडवर्ड एयरफोर्स बेस से एक रिमोट कंट्रोल बोइंग 720 उड़ान भरता है और ईंधन की रिसर्च के लिए नासा उस जहाज को क्रैश करवा देता है। क्रैश होने से पहले ये जहाज 16 घंटे और 22 मिनट उड़ चुका था जिसमें 10 टेक ऑफ, 69 अप्रोच और 13 लैंडिंग शामिल थी। अगस्त 1997 फीमा के इमरजेंसी रिस्पांस के कवर पेज पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर निशानियां लगाई गई थी। 28 फरवरी 1998 ग्लोबल हॉक बगैर पायलट की अपनी पहली उड़ान कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरफोर्स से 32,000 फीट की बुलंदी पर मुकम्मल करता है। एक कमर्शियल जेट भी इसी बुलंदी पर उड़ता है। 1999 नॉरड एक ट्रेनिंग शुरू करता है जिसमें हाईजेक किए हुए हवाई जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से जाकर टकराते हैं। जून 2000 जस्टिस डिपार्टमेंट एक मैनुअल जारी करता है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर निशाना लगाए गए थे। सितंबर 2000 अमेरिका की नई सदी के लिए नियो कंजर्वेटिव ग्रुप के जिसके मेंबर डिक चेनी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जेब बुश और पॉल वुल्फोविज हैं, रीबिल्डिंग अमेरिका डिफेंस नाम की एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बदलाव को लाने में एक लंबा अरसा लग सकता है और जरूरत पड़ने पर पर्ल हार्बर जैसे हादसे भी पेश आ सकते हैं। 24 अक्टूबर 2000 पेंटागन मास्कोल नाम की दो ट्रेनिंग एक्सरसाइज में से पहली एक्सरसाइज को अंजाम देता है जिसमें बोइंग 757 एक बिल्डिंग से टकराता है। 1989 में हुई एक ऐसी ही ट्रेनिंग में नेवी के XF-4 पायलट चार्ल्स बर्लिंगहम ने भी हिस्सा लिया था। पेंटागन में 17 साल काम करने के बाद वो अमेरिकन एयरलाइंस में काम पर लग गया और 12 साल बाद उसका बोइंग 757 पेंटागन से टकराता है। अप्रैल 2001 नॉरेड एक ट्रेनिंग करना चाहता है जिसमें हवाई जहाज को पेंटागन पर गिराना था लेकिन उस प्लान को रद्द कर दिया जाता है। जून 2001 डिफेंस डिपार्टमेंट ने हाईजेक होने की सूरत में फौजी मुदाखलत के लिए नया कानून बनाया। उसमें ये कहा गया है कि इस कार्यवाही से पहले डिफेंस डिपार्टमेंट को सीधे डिफेंस सेक्रेटरी से इजाजत लेनी होगी। एफबीआई की दी हुई चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्राफ्ट अपनी सर्विस की बकाया मुद्दत में चार्टर्ड जहाज में सफर करता है। 4 जुलाई 2001 1998 से अमेरिका का वांटेड ओसामा बिन लादेन का दुबई के एक अमेरिकन अस्पताल में इलाज होता है और वहां उससे CIA का एक लोकल चीफ भी मुलाकात करने आता है। 24 जुलाई 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 के मालिक लैरी ए. सिल्वरस्टीन ने पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को $3.2 बिलियन में 99 साल की लीज पर लिया, यानी 11 सितंबर से 6 हफ्ते पहले। इस लीज में $3.5 बिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल थी, जो खास तौर पर दहशत गर्दाना हमलों को भी कवर करती थी। 6 सितंबर 2001 यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टॉक पर 3150 पुट ऑप्शन रखे गए। पुट ऑप्शन उस वक्त रखा जाता है जब स्टॉक के दाम गिरने का अंदेशा हो। रोजाना के मुकाबले उस रोज 4 गुना पुट ऑप्शन रखे गए। बम सूंघने वाले कुत्तों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से हटा लिया गया और सिक्योरिटी गार्ड्स की 2 हफ्ते से चल रही 12 घंटे की शिफ्ट को भी खत्म कर दिया गया। 7 सितंबर 2001 बोइंग के स्टॉक पर 27,294 पुट ऑप्शन रखे गए, जो आम दिनों से 5 गुना ज्यादा थे। 10 सितंबर 2001 अमरीकी एयरलाइंस के स्टॉक पर 4,516 पुट ऑप्शन रखे गए, जो आम दिनों से 11 गुना ज्यादा थे। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के कई बड़े अहदेदारों ने अगली सुबह का अपना हवाई सफर कैंसिल किया। सैन फ्रांसिस्को के मेयर बिली ब्राउन को फोन के जरिए एक वार्निंग मिली कि वो अगली सुबह जहाज में सफर ना करें। ये फोन अमरीकी हुकूमत की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलिजा राइस का था। पाकिस्तान में एक मिलिट्री अस्पताल के सभी यूरोलॉजिस्ट को हटाकर एक खास टीम लाई जाती है ताकि उनके खास मेहमान ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी करे। वहां उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। 11 सितंबर 2001 चेंटिली वर्जीनिया में नेशनल रिकॉग्नाइसेंस एक ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे कि अगर एक कॉर्पोरेट जेट बिल्डिंग से टकरा जाए तो क्या करना चाहिए। नॉरेड भी कई मिलिट्री ट्रेनिंगों को अंजाम दे रही थी, जैसे कि एक विजिलेंट गार्डियन, एक ऐसी ट्रेनिंग का नाम है जिसमें अमेरिका के शुमाल में एयर डिफेंस की चौकियों पर होने वाले ख्याली हमलों का दिफा होता है। दूसरा, नॉर्दर्न विजिलेंस अपने फाइटर जहाजों को कनाडा और अलास्का में ख्याली रूसी जहाजों से मुकाबला करने भेजता है। तीसरा, वॉशिंगटन DC के नेशनल गार्ड पेंटागन से 15 मील के फासले पर मौजूद एंड्रूस एयरफोर्स बेस से 3 F-16 लड़ाकू जहाजों को 180 नॉटिकल माइल दूर एक ट्रेनिंग मिशन के लिए नॉर्थ कैरोलिना भेजते हैं। अब पूरे अमेरिका की हिफाजत के लिए सिर्फ 14 फाइटर जेट बचते हैं।
आपसे पहला बुनियादी सवाल ये है कि पिछले सितंबर में हुए हादसे के सिलसिले में अमरीकी मीडिया कवरेज के बारे में आपकी क्या राय है?
हाँ, मेरे जहन में सिर्फ एक लफ्ज आता है, शर्मनाक।
आप इस वक्त यकीनन बेहोश परेशान कर देने वाला मंजर देख रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और हमारे पास मौजूद रिपोर्ट के जिसकी तस्दीक नहीं हुई है उसके मुताबिक आज सुबह एक हवाई जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के किसी एक टावर से जा टकराया है।
पूरे तौर पर अमेरिकी जर्नलिस्टों को डराया गया था और इससे मोहब्बत और देशभक्ति के रवैये से। तुम्हें पता है कि अगर तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एतराज कर रहे हो तो तुम उनके दुश्मन हो और तुम्हें कुछ हो गया और तुम दहशतगर्दी हो सकते हैं।
तो कौन सा कहा? इसका मतलब ये है कि हमें अपनी राय पेश करने का भी हक नहीं?
नहीं, ऐसा नहीं है। राय दे सकते हैं लेकिन इतनी तादाद में लोग नहीं है जो ये खतरा मोड़ लें।
अब तक इस बात की कोई पक्की रिपोर्ट नहीं थी। यकीनी तौर पर ये जहाज ही था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मिसाइल देखा था। यकीनन उससे गूल नीले रंग का लोगो था और यकीनन वो एक मुसाफिरों वाला जहाज नहीं लग रहा था और उससे मुझे साइड में खिड़कियाँ भी नजर नहीं आई।
मार, अगर तुम्हारा कहना सही है तो फिर ये कोई कार्गो प्लेन होगा। तुम्हें कोई खिड़कियाँ भी तो नहीं नजर आई?
जी, मुझे कोई खिड़की नहीं दिखी। वो एयरपोर्ट पर दिखाई देने वाले आम जहाज के जैसा नहीं था। जहाज के आगे के हिस्से में नीले रंग का लोगो भी था।
लोग भेड़ बकरी की तरह सोचते हैं। अगर आप लोगों के बहाव के साथ नहीं जाते हैं तो आप अमेरिका के दुश्मन हैं और आप पर भी शक किया जाएगा।
हम इस जगह से आगे नहीं जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस, आग बुझाने वाले, FBI के एजेंट सभी जमा हुए हैं। यहाँ से दौड़ता हुए भी नजर आ रहे हैं। ओ, एक बड़ा धमाका, टावर गिर रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
सोच रहे होंगे कि ऐसा होने पर किसका फायदा होगा, आपको कुछ बेसिक चीजों की तरफ देखना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे तो जिनकी हकीकत का पता है, हाँ लेकिन कुछ चीजों की तरफ नजर डालने की कोशिश करता हूँ। किसका प्लान था, किसके पास मौका था, किसके पास हथियार और दूसरे इक्विपमेंट थे, किसके पास ऐसा करने का जिक्र था। काफी अच्छा गुजारा है और अच्छी तरह पता है क्या पैसे कैसे होते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ये सब करते हैं। न्यूज में पब्लिक को कभी भी किसी हादसे की सच्चाई नहीं बताई जाती और मुझे लगता है कि लोग इससे ज्यादा भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये तीर बहुत लंबा है। क्या आप कहना चाहते हैं कि इस हादसे में बुश सरकार का फायदा है?
बिल्कुल सही है,
हाँ हाँ बिल्कुल सही है।
नौ बजकर 38 मिनट, आर्लिंगटन वर्जीनिया। 530 माइल की स्पीड पर जहाज 330 डिग्री का टर्न लेता है। ढाई मिनट में 7000 फीट नीचे उतरते हुए अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन से जा टकराती है। उसका फाइनल अप्रोच वॉशिंगटन बुलेवार्ड के ऊपर चढ़ा। बिजली के खंभे उससे टकराने से पहले ही जमीन से उखड़ गए। आइए पहले हानी हाइनोर से मिलते हैं। एक महीने पहले हानी बुई मैरीलैंड के फ्रीवे एयरपोर्ट से एक छोटा जहाज किराए पर लेने आया था, लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जब हानी तीन मर्तबा टेस्ट के लिए उड़ान भरता है तो उसे एक सिंगल इंजन 172 सेस्ना जहाज को कंट्रोल करने में और लैंड करने में मुश्किल पेश आती है।
हाय, मेरा नाम मार्शल बर्नार्ड है और मैं फ्रीवे में चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ। हानी, दरअसल ये हुआ कि वो एयरपोर्ट आया था और वो वाला जहाज किराए पर ले जाना चाहता था। उसके पास पहले से ही सर्टिफिकेट थी, वो यहाँ सीखने नहीं आया था। उसने पायलट की ट्रेनिंग एरिज़ोना की किसी प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल से ली थी, मुझे उस स्कूल का नाम याद नहीं। उसके पास पहले से सर्टिफिकेट थी। हमारे पास कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें फ्लाइट की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती बल्कि सिर्फ जहाज किराए पर लेना चाहते।
हानी किस लिए आया था?
हानी का केस ये था कि वो हमारा जहाज किराए पर ले जाना चाहता था। हमारे इंश्योरेंस के कानून के हिसाब से ऐसे लोगों को पहले हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ उड़ान भरनी पड़ती है और वो इसी से गुजर रहा था। सभी का मानना है कि वो खामोश था और उसे जहाज भी कुछ इतना अच्छी तरह उड़ाना नहीं आता था, अंग्रेजी भी कमजोर थी। उसके सिलसिले में इससे ज्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे नजरिए के मुताबिक उसमें कोई खास सलाहियत नहीं थी और क्या बता सकता हूँ इसके बारे में।
उससे हटकर ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट 77 को ट्रैक कर रहे एक ट्रैफिक कंट्रोलर उसे एक मिलिट्री जहाज समझ रहे थे। अब बिजली के खंभे। 22 नवंबर 2004 को एक प्राइवेट जेट जो जॉर्ज बुश सीनियर को लेने ह्यूस्टन जा रहा था, ह्यूस्टन हॉबी एयरपोर्ट पर उतरने से एक मिनट पहले एक बिजली के खंभे से टकराकर तबाह हो जाता है। बिजली के खंभे से टकराने की वजह से जहाज की एक विंग अलग हो गई और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन 5 बिजली के खंभों को जमीन से उखाड़ फेंकने के बावजूद फ्लाइट 77 की विंग और बिजली के खंभों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तीसरा ये कि अगर आप लोग उस दिन के फोटो पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि वो जो भी चीज पेंटागन से टकराई वो जमीन से घिसकर नहीं गई। अगर फ्लाइट 77 जमीन पर गिरकर घिसती हुई पेंटागन से टकराती तो जमीन की हालत कुछ ऐसी होती, लेकिन जमीन की हालत कुछ ऐसी थी, बिल्कुल साफ। चौथा, फ्लाइट 77 का कोई नामो निशान क्यों नजर नहीं आ रहा है?
दूर से देखने पर शायद ऐसा लगता होगा, लेकिन जब मैंने नजदीक से मुआयना किया तो पेंटागन के करीब कहीं भी जहाज के टकराने का कोई सबूत नहीं मिला। बिल्डिंग के सिर्फ एक हिस्से में कुछ नजर आ रहा है, और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर जहाज के कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं जो कि इतने छोटे हैं कि उन्हें हाथ से उठा सकते हैं। जहाज के तेल, इंजन या जहाज के और कोई बड़े हिस्से आसपास में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे कि पता चल सके कि पेंटागन में पूरा का पूरा जहाज टकराया था।
सरकार का बयान ये है कि जलते हुए जेट के ईंधन की सख्त गर्मी की वजह से पूरा जहाज भाप बनकर हवा में गायब हो गया। यकीनन इन तस्वीरों में बोइंग 757 का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आग में इतनी गर्मी थी कि जंबो जेट को खा गई, तो जांच करने वालों ने पेंटागन में मिलने वाले 189 हलाक लोगों में से 184 लोगों को किस तरह पहचाना? लाशों को पहचानने की जिम्मेदारी फौज की डीएनए टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी की थी, और उन्होंने शेंसविल में मरने वालों का भी टेस्ट किया था। इस बात को आप ध्यान में रखें कि एक 757 में प्रेट एंड विटनी के दो इंजन रहते हैं जो स्टील और टाइटेनियम एलॉय से बनाए जाते हैं, जिसकी गोलाई 9 फीट, लंबाई 12 फीट और वजन 6 टन रहता है। टाइटेनियम 1688 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पिघलता है। जेट ईंधन, जिसे केरोसिन भी कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन है जो 40 मिनट तक जलने के बाद 1120 डिग्री तक पहुंचता है, और वो भी इस शर्त पर कि उसे लगातार ईंधन मिलता रहे। ईंधन को धमाके के बाद फौरन जल जाना चाहिए था, इसलिए साइंस के कानून के मुताबिक ये नामुमकिन है कि 12 टन का स्टील और टाइटेनियम केरोसिन से जलकर हवा में भाप बनकर उड़ जाए। यानी दोनों इंजन पेंटागन में ठीक ठाक हालत में मिलने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह 3 फीट की गोलाई वाला सिर्फ एक टर्बोजेट इंजन पेंटागन में मिला। अमेरिकन फ्री प्रेस में इस तस्वीर के छपने के बाद देखने वालों ने लिखा कि जहाज का वो टुकड़ा दरअसल 757 की टेल में लगने वाला ऑक्सिलरी पावर यूनिट था। क्रिस बोलिन ने 757 के एपीयू बनाने वाली कंपनी हनीवेल से कांटेक्ट किया। उस कंपनी के एक माहिर ने अपना नाम जाहिर न होने की शर्त पर कहा कि किसी भी सूरत में ये एपीयू का हिस्सा नहीं है। बोलिन ने 757 इंजन बनाने वाली कंपनी प्रेट एंड विटनी से कांटेक्ट किया। प्रेट एंड विटनी ने बोलिन को रोल्स-रॉयस जाने के लिए कहा। रोल्स-रॉयस के स्पोक्समैन जॉन ब्राउन ने बोलिन से कहा, ये किसी भी रोल्स-रॉयस इंजन का हिस्सा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। तो अगर ये टुकड़ा बोइंग 757 का नहीं तो फिर किसका है, और फ्लाइट 77 का इंजन कहा गया? दूसरा पहचानने लायक पुर्जा जहाज के बाहरी हिस्से का एक टुकड़ा था कि फ्लाइट 77 पेंटागन से टकराई थी, लेकिन ये टुकड़ा अमेरिकन एयरलाइंस के किसी भी हवाई जहाज का हो सकता है, और 530 मील की रफ्तार से टकराने के बावजूद उस पर कोई खराश या दबाव क्यों नहीं? तीसरा टुकड़ा एक डिफ्यूजर केस है। आइए हम 757 जहाज के डिफ्यूजर केस को नजदीक से देखते हैं। क्या आप इस पर त्रिकोण शक्ल के बेजल देख रहे हैं? ये आपको पेंटागन से मिले केस पर नहीं मिलेंगे। बाकी बचे टुकड़े इतने हल्के थे कि उन्हें हाथों से उठाया जा सकता था। अगर फ्लाइट 77 टकराते ही हवा में भाप बनकर उड़ गया तो ये हवाई जहाज की तारीख में پہلا واقعہ ہوگا. مثلاً 15 اگست 2005 کو ہیلیس ایئرویز فلائٹ 522 جو ایک بوئنگ 737 تھا اور ایدنس جا رہا تھا تیز رفتار سے ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا جس میں 121 مسافر تھے جو سبھی ہلاک ہو گئے. آگ ٹیل سیکشن ونگس انجن کاکپٹ لاشیں میرا اشارہ سمجھے. پانچواں بوئنگ 757 کے مقابلے پینٹاگن کو اتنا کم نقصان کیوں پہنچا؟ یہ فوٹو اس وقت کی ہے جب باہر کے حصے کی چھت گری تھی. باہری دیوار کا نقصان صرف ایک بڑا سا سوراخ ہے جس کی گولائی 16 فٹ سے زیادہ نہیں ہے. بوئنگ 757 کی لمبائی 155 فٹ ہے, اس کی اونچائی 44 فٹ, دونوں ونگز کو ملا کر اس کی چوڑائی 124 فٹ اور اس کا وزن 100 ٹن ہوتا ہے. کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز اس 16 فٹ سوراخ میں غائب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی ملبہ نہیں چھوڑا؟ دونوں ونگز وارٹیکل سٹیبلائزر اور انجن وغیرہ کے بلڈنگ سے ٹکرانے کی وجہ سے بلڈنگ کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ آپ کو یاد ہے نا انجن کتنے بڑے تھے؟ اگر 6 ٹن سٹیل 530 میل کی سپیڈ سے پینٹاگن سے ٹکرایا ہوتا تو دیوار کو توڑتا ہوا بلڈنگ میں دھس جاتا. اس کے باوجود پینٹاگن کی باہر کی دیوار میں صرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا اور جس جگہ انجن ٹکرایا تھا وہاں پر تو کسی قسم کا نقصان ہوا ہی نہیں. سوراخ کو لگ کر جو کھڑکیاں ہیں وہ ٹوٹی کیوں نہیں؟ سوراخ کے بالکل سامنے کیبل کے بنڈل بھی ویسے کے ویسے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پینٹاگن کی سی رنگ کے اندر کی طرف تقریباً 16 فٹ کا ایک اور سوراخ ہوا, یعنی باہر سے تیسری رنگ. فلائٹ 77 کی وجہ سے اس سوراخ کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاز 9 فٹ سٹیل اور سیمنٹ کی بنی دیواروں کو توڑتا ہوا وہاں تک پہنچا. ایک کمرشل جہاز کا آگے کا حصہ ہلکے وزن کے کاربن سے بنتا ہے. کمرشل جہاز کے ٹکرانے پر اکثر اس کے آگے کے حصے کا حال ایسا ہوتا ہے. اگر اس حصے کے ٹکرانے سے یہ سوراخ بنا تو جہاز کے باقی کے حصے ٹکرانے پر کوئی نقصان کیوں نہیں ہوا؟ تو کون سی چیز پینٹاگن کی باہری دیوار میں 16 فٹ سوراخ کر کے 9 فٹ سٹیل اور کانکریٹ کی دیوار کو پار کرتی ہوئی ایک اور 16 فٹ کا سوراخ کر سکتی ہے؟ ایک روز بتائی. جب بیلگریڈ کے سولو بدن ملسویک کے گھر پر ٹوموہاک کروز میسائل مارا گیا تھا تو یہ انجام تھا. بہت ملتا جلتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے 8 سے 20 پیسنجر والا جہاز دیکھا تھا.
وہ شاید ایک 20 مسافر والا کارپوریٹ جیٹ تھا, اس پر کوئی ٹریڈ مارک بھی نہیں تھا اور وہ سائے سے باہر آ رہا تھا.
اور کچھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکن ملٹری کا ہیلی کاپٹر دیکھا.
جب یہ ہوا اس نے کہا کہ اس نے ایک ہیلی کاپٹر کو بلڈنگ کا چکر لگاتے دیکھا تھا اور وہ امریکن ملٹری کے جیسا دکھائی دے رہا تھا. وہ بلڈنگ کے پیچھے غائب ہو گیا جہاں ہیلی کاپٹر اترتے ہیں, اور پھر میں نے ایک آگ کا گولا آسمان کی طرف اٹھتے دیکھا.
اگر بوئنگ 757 پینٹاگن سے نہیں ٹکرایا تو پھر کیا ٹکرایا؟ تو سچ کون بول رہا ہے؟ اس بات کو دھیان میں رکھیں. جہاز کے ٹکرانے کے وقت اپریل گولب پینٹاگن کے دوسرے حصے میں کام کر رہی تھی. جم مارس کی کتاب انسائڈ جاب میں اپریل نے کہا کہ جب وہ اسپتال میں تھی تو ایک سے زیادہ مرتبہ کچھ سوٹ پہنے ہوئے لوگ ان سے ملنے آئے تھے. انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ تھے اور کس ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے, لیکن انہیں ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ وہ پیسے لے اور اپنا منہ بند رکھے. وہ لوگ بار بار اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ جہاز بلڈنگ سے ٹکرایا تھا, لیکن وہ وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے وہاں کوئی جہاز نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے دیکھے. شیریٹن ہوٹل جو 1.6 میل کی دوری پر تھا اس دھماکے سے ہل گیا. پینٹاگن پر موجود کئی ملٹری کے افسران نے کہا کہ انہوں نے کوڈائٹ کی بو سونگھی تھی. کوڈائٹ کی بو جیٹ کے ایندھن کی بو سے بہت الگ ہوتی ہے. کوڈائٹ گولہ بارود میں استعمال ہوتا ہے. اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے بہت کم دھواں نکلتا ہے اور کوئی چمک نہیں ہوتی, لیکن اس میں بڑی آگ بھڑکانے والی لہر ہوتی ہے. وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ سلور رنگ کی چمک ظاہر ضرور ہوئی تھی. ट्विन टावर से जहाज के टकराने पर जो जेट ईंधन का धमाका हुआ वो पीले रंग का था। ये देखिए आग का एक बहुत बड़ा गोला, कोई सिल्वर चमक नहीं, कोई झटके नहीं, लेकिन पेंटागन में एक छोटी सी सिल्वर चमक जो नजदीक के बिल्डिंगों को हिला देती है। तो पेंटागन से क्या टकराया? वो जो भी था उसका ताल्लुक उन दोनों जहाजों से था जो उस हादसे के बाद हवा में थे। पहला वाला तो मुतफिका तौर पर C-130 पहचाना गया है। दूसरा जहाज एक सफेद रंग का बेनिशान जहाज था जो वॉशिंगटन डीसी के ऊपर से जा रहा था।
मैं व्हाइट हाउस के सामने लफायत पार्क पर खड़ा हूँ। व्हाइट हाउस से तकरीबन 200 यार्ड की दूरी पर 10 मिनट पहले एक सफेद रंग का जहाज ऊपर मंडरा रहा था। आमतौर पर व्हाइट हाउस के आसपास कभी भी जहाज दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहाँ किसी भी जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं है। किसी भी वजह से यह मान नहीं सकते कि यह जहाज कोई खराब इरादे से यहाँ मौजूद था, लेकिन खुफिया एजेंसी यकीनन उस जहाज को देखकर परेशान थी और उसकी तरफ इशारा भी कर रही थी। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है।
FAA के इंचार्ज जेन गार्वे ने 9:25 पर नेशनल ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में कोई भी जहाज उड़ान नहीं भर सकता है, चाहे वो मिलिट्री का जहाज हो या कमर्शियल, और जो भी जहाज हवा में हो उसे फौरन नीचे उतारा जाए। 1903 में यह कानून बनने के बाद ये दोबारा कभी लागू नहीं किया गया था, लेकिन उस दिन मिलिट्री के जहाजों को उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी और FAA इस मामले में खामोश है। और आखिर में बार बार लोग पेंटागन पर दूसरे धमाके की बात क्यों कर रहे थे?
मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ कैपिटल के सामने मौजूद था जिसे अभी खाली करा दिया गया है, और अभी अभी हमने पीछे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हल्के से छोटे धमाके की आवाज़ सुनी। और पेंटागन पर दूसरे धमाके की खबर आ रही है, लेकिन अब तक उन खबरों की तस्दीक नहीं हुई है।
सातवां, एक पेट्रोल पंप। शेरिटन होटल और वर्जीनिया के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में FBI ने वहां जाकर उन कैसेटों को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही वहां काम करने वालों को ये धमकी दी कि वो किसी को भी कुछ न बताएं कि उन्होंने क्या देखा है। अगर हुकूमत चाहती है कि साबित करें कि फ्लाइट 77 ही पेंटागन से टकराया तो उन्हें इन कैसेटों को पेश करना चाहिए, बल्कि उन्होंने हेलीपोर्ट के सामने वाले कैमरे की सिर्फ 5 फ्रेम जारी की, हालांकि उसमें भी कहीं 757 दिखाई नहीं देता। 11 सितंबर से 4 दिन पहले सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में जमीन पर ठीक उसी जगह पर एक सफेद निशान दिखाई देता है जहां पर 4 दिन बाद कोई चीज पेंटागन से टकराई। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक है कि जहाज पेंटागन के उसी हिस्से से टकराया जो कि हाल में ही उस किस्म के धमाके को सहने के लिए बनाया गया था, और डोनाल्ड रम्सफेल्ड उसी के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में महफूज थे? अगर हुकूमत कुछ छिपा नहीं रही है तो वो कुछ सवालों के जवाब देने से क्यों घबराती है, या फिर वो वीडियो क्यों नहीं दिखाती? नौ बजकर 59 मिनट, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर तकरीबन 10 सेकंड में जमींदोज हो गया। 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी उसी तरह तकरीबन 10 सेकंड में नीचे आ गया। उसी दिन शाम 5:20 पर 47 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टावर नंबर 7 जो नॉर्थ टावर से 300 फीट की दूरी पर था अचानक गिर गया। इस बिल्डिंग में कई अहम इदारों के दफ्तर थे, CIA, डिफेंस डिपार्टमेंट, IRS, सीक्रेट सर्विस और मेयर रूडी जुलियानी का इमरजेंसी बंकर भी था। वॉल स्ट्रीट में हुए घपलों की 3 से 4 हजार फाइलें उसी बिल्डिंग में रखी हुई थी। बिल्डिंग नंबर 7 के अगल बगल की सभी बिल्डिंगें सही सलामत खड़ी रही, लेकिन बिल्डिंग नंबर 7 सिर्फ 6 सेकंड में मिट्टी के ढेर में बदल गई। अमरीकी सरकार क्या कहती है? दोनों बड़े टावर से गिरने वाले मलबे की वजह से बिल्डिंग नंबर 7 के अंदर कई डीजल की टंकियों में आग लग गई। اگر یہ سچ ہے تو یہ تاریخ کی تیسری بلڈنگ ہوگی جو آگ لگنے کی وجہ سے گر گئی، جس میں سے پہلی دو ڈبلیو ٹی سی کے دونوں ٹاور ہیں۔ 28 جولائی 1945 کو فوگ کی وجہ سے ایک فائٹر جہاز ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی 79 منزل سے ٹکرا گیا، 14 لوگ مارے گئے، $1 ملین کا نقصان ہوا، لیکن وہ بلڈنگ آج بھی صحیح سلامت کھڑی ہے۔ 14 فروری 1975 کو نارتھ ٹاور کی 9ویں اور 14ویں منزل کے درمیان آگ لگ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور آگ بجھانے والے پانی کے اسپرنکلرز بھی لگائے گئے۔ 4 مئی 1988 کو لاس اینجلس میں ایک 62 منزلہ ٹاور 3 گھنٹوں تک چلتا رہا اور آگ 4 منزلوں تک پھیل گئی، لیکن وہ گرا نہیں۔ 23 فروری 1991 کو فلاڈیلفیا میں ایک 38 منزلہ بلڈنگ جو 1973 میں بنائی گئی تھی 19 گھنٹوں تک جلتی رہی اور آگ 8 منزلوں تک پھیل گئی، لیکن یہ بلڈنگ نہیں گری۔ 17 اکتوبر 2004 کو وینزویلا میں ایک 1976 میں بنی ایک 56 منزلہ بلڈنگ 17 گھنٹوں تک جلتی رہی اور آگ 26 منزلوں سے پھیلتی ہوئی چھت تک پہنچ گئی، لیکن آپ جانتے ہیں یہ بلڈنگ بھی نہیں گری۔ 12 فروری 2005 کو میڈرڈ میں 32 منزلہ ونسر بلڈنگ جو سٹیل اور کانکریٹ سے بنی تھی تقریباً 24 گھنٹوں تک چلتی رہی اور اوپر کی 10 منزلوں کو برباد کر دیا۔ اوپر کی 10 منزلیں گر جانے کے باوجود پوری بلڈنگ نہیں گری۔ پھر بھی 11 ستمبر 2001 کو 1973 میں بنے دو 110 منزلہ ٹاور مکمل طور پر زمین دوز ہونے سے پہلے ایک ٹاور کی 4 منزلیں 56 منٹ تک اور دوسرے کی 103 منٹ تک جلتی رہیں۔ شاید کوئی کہے کہ ان بلڈنگوں کی بناوٹ کمزور تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان بلڈنگوں کے اندر کیا تھا۔ یہ دونوں ٹاور بننے میں 2 لاکھ ٹن سٹیل اور 4,25,000 کیوبک یارڈ کانکریٹ استعمال ہوا تھا۔ ان میں 103 لفٹیں تھیں، 43,600 کھڑکیاں تھیں، 60,000 ٹن کا اے سی پلانٹ اور 360 فیٹ کا ایک ٹی وی اینٹینا تھا۔ ہر ایک ٹاور کا کور 87/133 فیٹ کا تھا، جس میں سے 36/16 انچ چوڑے 47 باکس کالم تھے۔ نارتھ ٹاور 1970 میں مکمل ہوا جو 1368 فیٹ اونچا تھا۔ ساؤتھ ٹاور 1973 میں مکمل ہوا اور وہ 1362 فیٹ اونچائی رکھتا تھا۔ 1974 میں سیئرز ٹاور کے بننے سے پہلے یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگیں تھیں، اور امریکی حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں گے کہ یہ دو بھاری بھرکم بلڈنگیں صرف 10,000 گیلن جیٹ کے ایندھن سے تباہ ہو جائیں گی۔ بہرحال گواہوں کے بیانات، ویڈیو کلپنگز اور تھوڑی سی عقل ان کے اس دعوے کو رد کر دیتی ہے۔ دوسرا جہاز صبح 9:03 پر ساؤتھ ٹاور کی 78ویں اور 82ویں منزلوں کے درمیان ٹاور کے ساؤتھ ایسٹ کونے سے ٹکرایا۔ جہاز کا آدھے سے زیادہ ایندھن ٹاور کے باہر ہی ایک آگ کے گولے کی شکل میں پھٹا۔ پھر بھی یہ ٹاور پہلے نیچے آیا، جبکہ جہاز نارتھ ٹاور سے بالکل سیدھے جا ٹکرایا تھا اور وہ 18 منٹ پہلے سے جل بھی رہا تھا۔ سر آئزک نیوٹن کے لا آف موشن کے مطابق کسی بھی چیز کے نیچے گرنے کے وقت کا حساب اس طرح لگاتے ہیں، ٹائم اسکوائرڈ از اکول ٹو ڈسٹینس اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی۔ دونوں ٹاور تقریباً فری فال کی سپیڈ میں نیچے آئے، 2 لاکھ ٹن سٹیل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے، 4,25,000 کیوبک یارڈ سیمنٹ دھول میں تبدیل ہو گیا، ہزاروں جانیں کچھ ہی لمحوں میں چلی گئیں۔ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کس کی وجہ سے گرا؟ چلیے ماہرین سے پوچھتے ہیں۔ نیو میکسیکو انسٹیٹیوٹ آف مائننگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس پریسیڈنٹ وان رومیرو نے کہا कि जहाज के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने के बाद टावर के अंदर पहले से रखे हुए बम के फटने की वजह से टावर नीचे आए। ये मुमकिन ही नहीं कि वो जहाज के टकराने की वजह से नीचे आए। 10 दिन बाद बयान तब्दील हो जाता है कि टावर आग लगने की वजह से नीचे गिरे थे। रोमेरो ने अचानक अपना बयान बदल क्यों दिया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कंस्ट्रक्शन मैनेजर और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हाइमन ब्राउन ने कहा, बिल्डिंग की बनावट ऐसी थी कि वो हर तरह के हादसे को बर्दाश्त कर सके, जैसे कि हरिकन, तूफान, बम धमाके, यहाँ तक कि जहाज का टकराना भी। लेकिन 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चल रहे ईंधन ने बिल्डिंग के स्टील को कमजोर कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इस्तेमाल किए गए स्टील की जांच करने वाली कंपनी अंडर राइटर्स लेबोरेटरीज के केविन रायन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के फ्रैंक केल को एक खत में लिखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ASTM E 119 सर्टिफाइड स्टील इस्तेमाल हुआ था। इस किस्म के स्टील की टेस्ट लेते वक्त उसे कई घंटों तक 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, और हम सब इस बात को कबूल करते हैं कि उसी मेयार का स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा चालू किस्म का स्टील भी तकरीबन 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर ही पिघलता है। तो डॉक्टर ब्राउन ने ये नतीजा कैसे निकाल लिया कि बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला बेहतरीन किस्म का स्टील 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट की वजह से पिघल गया? ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर उस बिल्डिंग का स्टील नर्म हुआ या पिघला भी था, तो मुझे यकीन है कि सब इस बात को कबूल करेंगे कि वो जेट के ईंधन या दूसरे किसी तरह के ईंधन की वजह से नहीं पिघला। बिल्डिंग में लगी दूसरी छोटी मोटी आग की वजह से पिघलना तो दूर की बात है। रायन के बयानात दूसरे एक्सपर्ट्स के बयानात से टकराते हैं कि जिन्होंने कहा था कि 2000 डिग्री की गर्मी की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर गिर गए। उस खत के लिखने के कुछ दिनों बाद केविन रायन को उस ओहदे से हटा दिया गया।
सुबह 10 बजे ये बिल्डिंग अपने आप गिर रही है। दूसरी बिल्डिंग जिससे जहाज टकराया था अभी पूरी तौर पर गिर गई है।
हमें कोई आइडिया नहीं ये किस वजह से हुआ।
ये एक प्लान्ड डेमोलिशन लगता है।
ऐसा लगता है ये किसी डेमोलिशन टीम ने इसे गिराया है। ये देखिए, बिल्डिंग खुद ब खुद गिरी और अब वहाँ नहीं है।
अगर आप किसी जानकार को लाए जिसने कभी बिल्डिंग गिराते हुए देखा है, तो उसे पता होगा कि इस तरह की बिल्डिंग को गिराने के लिए बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में जाना पड़ता है।
इस तरह के 2-3 धमाके हुए और बिल्डिंग बाकायदा हिली, बिल्डिंग को बुनियाद से हिलाकर रख दिया। पहला और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि अलग किस्म का धमाका था।
एक बड़ा धमाका हुआ और अचानक लिफ्ट उड़ गई और धुआं निकलने लगा। मैंने उस आदमी को खींच कर बाहर निकाला, उसके हाथ की चमड़ी लटक रही थी। मैंने बाहर खींचा और एम्बुलेंस तक ले गया।
8वीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, एक धमाका हुआ और दोबारा हमें ऊपर फेंक दिया।
तरल के बाहर आया और पड़ गया।
हाँ, हमें बताओ वहाँ क्या हो रहा है।
हमने अभी देखा कि वहाँ किसी दूसरे किस्म का धमाका हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नंबर 2 पे, और वो कुछ अलग था।
हमें ऐसा लग रहा है कि टावर 2 में किसी अलग किस्म का धमाका हुआ है।
एक और बड़ा धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। हर तरफ धुआं ही धुआं और मलबा है।
हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 5 ब्लॉक की दूरी पर हैं। हम यहीं पर थे जब धमाके हुए और कुछ गिर रहा था। क्या वो कोई धमाके थे या बिल्डिंग गिर रही थी?
मुझे तो ऐसा लगा ये जैसे कोई एक बड़ा धमाका था।
उस वक्त हमने एक धमाके की आवाज़ नीचे आते सुनी। सभी चीजें काली काली हो गई, सब कुछ नीचे आ गया, कांच टूटने लगे, नीचे गिरते हुए मलबे से काफी लोग जख्मी भी हो गए। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और अंधेरा छा गया, बिल्कुल अंधेरा।
जैसा कि आप देख रहे हैं, FBI यहाँ पर है और उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उस बड़े धमाके से पहले वो यहाँ से हमने अभी देखा वो दूसरा वाला टावर। हमने देखा कि टावर नंबर 1 के ऊपर से धुआं निकलने लगा है और फिर अचानक एकदम से नीचे जमीन पर आ गया।
डेविडली, आप हमें क्या बता सकते हैं?
जॉन, कुछ ही सेकंड पहले बहुत भारी ब्लास्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दूसरा टावर नीचे आ रहा है।
साउथ टावर से कुछ दूरी पर चर्च स्ट्रीट पर लोगों की भीड़ में खड़े एक चश्मदीद गवाह ने बिल्डिंग की 10वीं और 15वीं मंजिल के दरमियान चिंगारियां निकलते देखा था। साउथ टावर के गिरने से पहले 6 मरतबा रोशनी चमकती दिखाई दी, जिसके साथ साथ चटकने की आवाज भी आ रही थी। جنی کار ڈبلیو ٹی سی کے سامنے والی بلڈنگ لبرٹی پلازا کی 36ویں منزل پر بزنس میٹنگ میں تھے۔ انہوں نے پہلا حملہ ریکارڈ کیا تھا۔ جہاز ٹکرانے کے 9 سیکنڈ بعد ایک دوسرا دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ تو نارتھ ٹاور کے اندر کیا ہوا؟ چلیے ولی روڈرک سے پوچھتے ہیں۔ ولی 20 سال سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرتا تھا۔ جب جہاز نارتھ ٹاور سے ٹکرایا، ولی سب لیول 1 پر تھا۔
اچانک ہم نے ایک آواز سنی، بوم! میں نے سوچا کہ بیسمنٹ کا جنریٹر پھٹا ہوگا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے میرے خدا، یہ جنریٹر ہوگا۔ جیسے ہی میں یہ بولنے گیا، پھر سے سنا بوم! وہاں اوپر کافی دور سے، تو دونوں میں فرق تھا، نیچے بیسمنٹ سے اور پھر اوپر سے، اور سب لوگ چیخنے لگے۔ ایک آدمی آفس میں چیختا ہوا آیا، بم پھٹا، بم پھٹا، ہاتھ ایسے آگے کیے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ کی چمڑی نکل گئی تھی، پھر پورے ہاتھ کی چمڑی لٹک رہی تھی، دونوں ہاتھ ایسے لٹک رہے تھے، اور اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کے کچھ حصے نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، لفٹ میں، لفٹ میں۔ اور یہ میں سمجھ نہیں پایا، تو میں نے سوچا شاید لفٹ کا جنریٹر پھٹا ہوگا۔ میں نے کہا، ہلو مت، اور EMS کو بلانے کے لیے فون کرنے جا رہا تھا۔ ایمرجنسی سروس یونٹ ساؤتھ ٹاور میں تھی، اور وہ ایسے موقعوں پر بہت جلد پہنچ جاتے تھے۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا، ایک اور دھماکہ ہوا اور سب ہل گیا۔ اتنی زور سے ہلا کہ مجھے لگا کہ زلزلہ آیا ہوگا، کیونکہ سب ہلنے لگا تھا۔ میں نے سب کو دروازے کی طرف جانے کو کہا، لیکن پھر سے دھماکے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، باہر نکلو، باہر نکلو، اور سب کو لوڈنگ ڈاک کی طرف دھکا مارنا شروع کیا۔
تم نے کتنے دھماکے سنے کل ملا کے؟
بہت زیادہ، وہاں پر بہت زیادہ دھماکے تھے، اور جب میں نے ان دھماکے کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ بلڈنگ میں بہت سے کچن تھے، تو شاید گیس کے سلینڈر پھٹے ہوں گے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک کلاس بلڈنگ تھی، اور اس کے قانون کے مطابق وہاں سلینڈر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے شک ہے کہ یہ گیس نہیں تھا، کیونکہ اس کا ثبوت ہے کہ بلڈنگ کے بیسمنٹ میں ڈیزل کی بڑی تنگی تھی، کیونکہ وہاں میکینیکل روم تھا، اور بیسمنٹ میں رکھے مشین کو چلانے کے لیے ڈیزل ضروری تھا۔ اس دن ہوئے دھماکے کو لے کر بہت سے غلط فہمیاں ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ آج تک مجھے اس سوال کا صحیح جواب نہیں ملا کہ اوپر والی منزلوں پر ہونے والے دھماکوں کی وجہ کیا تھی۔
نارتھ ٹاور کی لوبی کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور دیواروں پر لگا ماربل بھی دیواروں سے اکھڑ کر گر گیا تھا۔ سرکاری بیانات کے مطابق یہ لفٹ کے شافٹ سے نکلنے والے آگ کے گولے سے ہوا تھا، لیکن ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی لفٹ کے شافٹ بالکل ایئر ٹائٹ تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آکسیجن کے بغیر آگ 1300 فیٹ نیچے تک پھیل سکے۔ 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں نیو یارک سٹی کے 343 آگ بجھانے والے مارے گئے، کیونکہ وہ لوگ ٹاور کے گرنے سے پہلے اس کے اندر موجود تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ تو نیو یارک فائر ڈپارٹمنٹ کا کیا کہنا ہے؟ انجن نمبر 7 کے کئی آگ بجھانے والوں کے مطابق ٹاور کے گرنے سے پہلے کئی دھماکے ہوئے تھے۔
میں نے آواز سنی، بوم! میں اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہوا تھا، اندر آتے ہی الٹے ہاتھ کی طرف، میں باہر نکلا تو دیکھا کہ پیسج کے سب کانچ ٹوٹے ہوئے تھے۔ بلڈنگ کے باہر سڑک کے سامنے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والی بلڈنگ پر ٹاور کا شیڈو اس طریقے سے نیچے آ رہا تھا۔
میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوبی کی حالت اتنی خراب ہوگی۔
لوبی سڑک سے 6 مائل اوپر تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ وہیں لوبی میں ہی بم پھٹا تھا۔ سارے کانچ ٹوٹ گئے تھے۔ 10x10 فٹ کے جو ماربل کے سلیب تھے وہ بھی دیوار سے الگ ہو گئے تھے۔
میں माल चढ़ाने वाली लिफ्ट के पास गया तो देखा कि उसे भी उड़ा दिया गया था। तीसवा माला, हमने एक और धमाका सुना और वो बहुत जोरदार था।
एक आग बुझाने वाले लुई कचौली ने पीपल विकली से कहा कि वो कुछ आग बुझाने वालों को लिफ्ट में 24वीं मंजिल पर ले जा रहे थे ताकि लोगों को बाहर निकाल सके। आखिरी मर्तबा जब वो ऊपर गए तो एक बम फटा। उनके मुताबिक उस बिल्डिंग में कई बम रखे हुए थे। एक साल से ज्यादा अरसे तक पोर्ट अथॉरिटी ने 11 सितंबर को आग बुझाने वालों के दरमियान हुई बातचीत की टेप को बाहर निकलने नहीं दिया। आखिरकार नवंबर 2002 में वो टेप न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे न्यूज वालों को दिए गए। सवाल, टेप को रिलीज करने में इतना वक्त क्यों लगा? चीफ पामर साउथ टावर की 78वीं मंजिल तक पहुंच गए थे और आग बुझाने का प्लान भी तैयार कर लिया था। अगर अमरीकी सरकार की बात पर यकीन करें कि आग बहुत ज्यादा फैल गई थी तो पामर का 78वीं मंजिल तक पहुंचना और उसे बुझाना नामुमकिन था। आखिरकार 12 अगस्त 2005 को आग बुझाने वालों के दरमियान हुई बातचीत की 15 मिनट की टेप और उनके इंटरव्यूज को रिलीज किया गया। आग बुझाने वालों ने दो चीजों की बुनियाद पर कहा कि वो एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन था, बिल्डिंग के अंदर से निकलती हुई रोशनी की चमक और बिल्डिंग गिरने से पहले आ रही चटकने की आवाज। साइंस का इस गिरने के बारे में क्या कहना है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी ने रिकॉर्ड किया। साउथ टावर ने 2.1 का जलजला रिकॉर्ड किया और नॉर्थ टावर ने 2.3 का जलजला रिकॉर्ड किया। वॉन्यन किम ने क्रिस बॉलिन से कहा कि उनका सिस्मोग्राफिक 20 मील दूर एक क्वेरी में जमीन के नीचे होने वाले धमाकों को भी रिकॉर्ड करता है। वो धमाके 80,000 पाउंड अमोनियम नाइट्रेट के होते हैं और उसकी वजह से 1 और 2 के दरमियान के जलजले रिकॉर्ड होते हैं। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए बम धमाके सिस्मोग्राफिक में रिकॉर्ड तक नहीं हुए क्योंकि वो धमाके जमीन के नीचे नहीं हुए थे। टावर के गिरते हुए मलबे की ज्यादातर एनर्जी खुद टावर ने और आजू बाजू की बिल्डिंगों ने ही जज्ब कर ली। कंट्रोल डेमोलिशन के प्रेसिडेंट मार्क लॉयजर ने अमेरिकन फ्री प्रेस से कहा कि WTC के बेसमेंट में 47 कॉलम फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। 11 सितंबर के तकरीबन एक महीने बाद भी कुछ जगहों पर पिघले हुए स्टील का गर्मावा था। ये गर्म जगह लिफ्ट की शाफ्ट के बिल्कुल निचले हिस्से में मिली जो जमीन से 7 मंजिलें नीचे थी। हादसे के 3, 4 और 5 हफ्तों बाद मलबा हटाते वक्त पिघला हुआ स्टील मिला। बिल्डिंग नंबर 7 के नीचे से भी पिघला हुआ स्टील मिला। सबसे ज्यादा टेम्परेचर साउथ टावर के एक हिस्से में था जिसे 1370 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। बेसमेंट में मौजूद पिघले हुए स्टील का टेम्परेचर उससे डबल से ज्यादा था। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाज के टकराने की वजह से गिरा? सभी वीडियोस में आप बिल्डिंग के गिरने वाले हिस्से से 20 या 30 मंजिल नीचे धमाके होते हुए देख सकते हैं। यहाँ ये देखिए, एक यहां यहाँ। यहाँ और यहाँ भी। एटीएन सोरेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी और उन्होंने दोनों बिल्डिंगों का गिरना भी रिकॉर्ड किया था। गौर से देखिए। नॉर्थ टावर के गिरने से 12 सेकंड पहले कैमरे का स्टैंड हिलता है। हो सकता है आप सवाल करें, अगर बिल्डिंग में बम थे तो वो बिल्डिंग के अंदर कैसे पहुंचे? बेन फाउंटन, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसने WTC में काम किया था, ने पीपल मैगजीन से कहा कि 11 सितंबर के हफ्तों पहले कई मर्तबा ऐलान किए बगैर बड़ी अजीब किस्म की सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई, जिसमें दोनों टावर और बिल्डिंग नंबर 7 के कई हिस्सों को सिक्योरिटी की वजह से खाली कराया गया। डेरिया कोर्ट, जो नॉर्थ टावर का सिक्योरिटी गार्ड था, ने न्यूज जैसे कहा कि 11 सितंबर से दो हफ्ते पहले से सिक्योरिटी 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही थी, लेकिन 6 सितंबर को अचानक बम सूंघने वाले कुत्तों को बिल्डिंग से हटा लिया गया। तो ये किसके हुक्म से हुआ? प्रेसिडेंट बुश का भाई मार्विन 1993 से लेकर 2000 तक सिक्योरकॉम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था। सिक्योरकॉम एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कंपनी है जिसे कुवैत अमेरिकन कॉरपोरेशन सपोर्ट करती है। ये कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस, ड्यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 1990 के शुरू से लेकर 11 सितंबर तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को सिक्योरिटी फराहम करती थी। मार्विन HCC इंश्योरेंस होल्डिंग के एक्स डायरेक्टर भी हैं, जिसने 11 सितंबर को ही WTC के कुछ हिस्सों का इंश्योरेंस करवाया था। इस सिलसिले में और जानकारी दी जाने वाली थी लेकिन नहीं दी गई। आज तक SEC ने नहीं बताया कि उन्हें क्या जानकारी हासिल हुई। काश हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे की जांच करके कुछ मालूमात हासिल कर सकते कि वहां क्या हुआ था, लेकिन अफसोस कि मेयर जूलियानी ने उस मलबे को रिसाइकल करने के लिए दूसरे मुल्कों में भेजना शुरू कर दिया, जबकि अभी तहकीकात शुरू भी नहीं हुई थी। उन लोगों ने वारदात की जगह पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी और सारे सबूत मिटा दिए। क्या आप बता सकते हैं कि वारदात की जगह पर किसे जाने की इजाजत दी गई? कंट्रोल डिमोलिशन, जो 1995 में ओक्लाहोमा में हुई बमबारी के बाद वहां के मलबे को भी हटाने के जिम्मेदार थे। 15 जुलाई 2001 को कंट्रोल डिमोलिशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने की 400 फीट ऊंची दो ईंधन की टंकियों को गिराया था। उन टंकियों को गिराने की वजह बताई नहीं गई, जबकि उस बात को लेकर आसपास के रहने वाले लोगों ने कई मर्तबा शिकायत भी की। खैर, मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ। बिल्कुल साफ है, अमरीकी हुकूमत ने उसे पूरी प्लानिंग के साथ गिराया। ये अमरीकी आवाम पर एक नफ्सियाती हमला था और उसे मिलिट्री महारत के साथ अंजाम दिया गया। सुबह 10:06 शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया, फ्लाइट 9345 मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। 8:56 को क्लीवलैंड ओहायो में जहाज अपने रास्ते से हटा। सरकारी बयान के मुताबिक फ्लाइट 93 व्हाइट हाउस की तरफ जा रही थी, जब कुछ मुसाफिर दहशतगर्दों पर हावी हो गए और जहाज को शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया में गिरा दिया। 11 सितंबर के सभी वाकयात में से सबसे ज्यादा सवाल फ्लाइट 93 के सिलसिले में उठते हैं, क्या इस जहाज को मार गिराया गया या नहीं। बहरहाल सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ्लाइट 93 शायद शैंक्सविल के आसपास कहीं नहीं थी।
हम आपको फौरन ले चलते हैं पिट्सबर्ग में मौजूद फॉक्स के फोटोग्राफर क्रिस सैनिकी के पास। चंद मिनटों पहले वो यहीं हादसे की जगह पर मौजूद थे। क्रिस, हमने तस्वीरें देखी है, ऐसा लगता है वहाँ पे खड्डे के सिवा और कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल सही कहा, हम जहाँ पर थे वहाँ से जमीन में सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा और कुछ टूटे हुए दरख्त दिखाई दे रहे थे। वहाँ कुछ लोग काम करते थे और उस जगह पर चलते दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ से हमें अब कुछ भी नहीं दिख रहा है।
जहाज का कोई बड़ा टुकड़ा या कुछ भी
नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे पता चलता कि वहाँ पर कोई जहाज गिरा है।
आग या धुआं भी नहीं?
कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम शांत, बिल्कुल खामोश, वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, बस कुछ लोग वहाँ आ जा रहे थे, वो NTSB के लोग लग रहे थे, वहाँ वो लोग कुछ टुकड़ों को ढूंढ रहे थे।
आपके मुताबिक वो घटा कितना बड़ा था?
मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं समझता हूँ 15 से 20 फीट लंबा रहा होगा और तकरीबन 10 फीट चौड़ा रहा होगा।
जमीन पर धूल और राख के अलावा क्या आपको कुछ और दिखाई दे रहा था?
और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गंदगी, राख और लोगों का चलना फिरना, टूटे दरख्त।
समरसेट काउंटी के कोरोनर वॉली मिलर ने ह्यूस्टन क्रॉनिकल को बयान दिया कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने आसमान से लोहे के टुकड़े फेंक दिए हों। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भंगार से भरा हुआ ट्रक लिया, एक 10 फुट गड्ढा खोदा और उसमें वो भंगार उड़ेल दिया। पर जहाँ तक मुसाफिरों का ताल्लुक है, कुछ 20 मिनट के बाद मैंने कोरोनर बनकर घूमना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ कोई लाश थी ही नहीं। पिट्सबर्ग रिव्यू नाम के अखबार ने लिखा कि वहाँ खून का एक कतरा भी नहीं था, एक कतरा तक नहीं। ऐसा लगता है कि एक ही दिन के अंदर तारीख में दूसरी मर्तबा जहाज के टकरा कर तबाह होने पर पूरा का पूरा जहाज अपने मुसाफिरों के साथ गायब हो गया।
की जगह पर मौजूद रेड क्रॉस के नुमाइंदों के मुताबिक नाइजीरिया के जहाज के सभी मुसाफिर हलाक हो गए। हादसे के कुछ ही देर बाद ली गई तस्वीरों में एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जहां बोइंग 737 के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जहाज लेगोस से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद शदीद तूफान की वजह से गिरकर तबाह हो गया। ये जहाज नाइजीरिया की राजधानी अबुजा जा रहा था और ये माना जाता है कि इसमें नाइजीरिया के कुछ बड़े अफसरान सवार थे।
तो अगर फ्लाइट 93 शेक्सविल में नहीं गिरी तो कहां गई? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? 11 सितंबर सुबह 11:47 पर सिनसिनाटी ओहायो के WCPO नाम के लोकल टीवी स्टेशन ने कहा कि बम के खतरे की वजह से क्लीवलैंड के हॉपकिंस एयरपोर्ट पर 2 जहाज उतरे थे। यूनाइटेड एयरलाइंस के मुताबिक उसमें से एक फ्लाइट 93 थी। क्या आप चकरा गए? चलिए आगे देखते हैं। तकरीबन सुबह 10 बजे क्लीवलैंड का हॉपकिंस एयरपोर्ट खाली कराया गया इस अफवाह के साथ कि एक अगवाशुदा हवाई जहाज वहां उतरने वाला है। मुसाफिरों को वापस जाना पड़ा, लेकिन गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल। बसों को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लोगों को घर भेज दिया गया। एसोसिएटेड प्रेस और ओहायो के लोकल अखबारात के मुताबिक सुबह तकरीबन 10:45 पर एक जहाज उतरा, लेकिन डेल्टा एयरलाइंस ने इस बात की तस्दीक की कि उनका जहाज डेल्टा 1989 10:10 पर क्लीवलैंड में उतरा, यानी फ्लाइट 93 क्लीवलैंड पर तकरीबन 10:45 पर उतरा। डेल्टा 1989 की तकरीबन 2 घंटे तक तलाशी ली गई और फिर सभी मुसाफिरों से एक एक करके पूछताछ की गई। दी प्लेन डीलर की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज 12:30 पर खाली किया गया, लेकिन एक रॉन बेकन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जहाज 11:15 पर खाली किया गया, तो उसका मतलब ये है कि वो फ्लाइट 93 होगी। तो 11:15 पर 200 के करीब मुसाफिर फ्लाइट 93 से बाहर आए। डेल्टा 1989 के एक मुसाफिर ने बताया कि उसे FAA हेडक्वार्टर ले जाया गया, लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों को नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर ले जाया गया। उस जगह को पहले से ही खाली करवा दिया गया था। नतीजा ये निकला है कि डेल्टा 1989 10:10 पर उतरा और 12:30 पर खाली कराया, यानी 2.5 घंटे बाद, और 69 मुसाफिरों को FAA के हेडक्वार्टर ले जाया गया। फ्लाइट 93 जो 10:45 पर उतरी, आधे घंटे में खाली कराई गई। तकरीबन 200 मुसाफिरों को फौरन नासा के खाली रिसर्च सेंटर ले जाया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक जहाज के 200 मुसाफिर आधे घंटे में उतारे जा सकते हैं, तो 69 मुसाफिरों को उतारने में 140 मिनट क्यों लग गए? हम ये फर्ज कर सकते हैं कि डेल्टा 1989 के मुसाफिर कहीं पर महफूज हैं। अब सवाल यह रह जाता है कि फ्लाइट 93 के 200 मुसाफिर कहां गए? ये एक दिलचस्प बात है कि चारों जहाजों पर सवार मुसाफिरों की तादाद मिलाकर 198 या 243 है या 243 है। हमें शायद कभी पता नहीं चल पाएगा कि फ्लाइट 93 को क्या हुआ, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि क्या नहीं हुआ। जब भी ये सबूत लोगों को पेश किए जाते हैं तो अक्सर ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। पहला सवाल होगा कि अगर अलग अलग जहाज इस्तेमाल हुए थे तो असली जहाज का क्या हुआ। अफसोस कि शायद हमें हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर हम वहाँ इस्तेमाल हुए जहाज के ब्लैक बॉक्स का मुआयना कर सकते तो हम ये साबित करते कि वो असली जहाज नहीं थे। एक कमर्शियल जहाज में दो ब्लैक बॉक्स होते हैं और दोनों में अलग अलग किस्म के रिकॉर्डर होते हैं। एक कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड करता है और दूसरा फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट रिकॉर्डर कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करने के साथ साथ इंजन की आवाज, चेतावनियां, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई बातचीत, मौसम के हालात, पायलट और क्रू के दरमियान की गुफ्तगू वगैरह को रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर 28 अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करता है, जैसे टाइम, एल्टीट्यूड, स्पीड और डायरेक्शन वगैरह। ये रिकॉर्डर बहुत ही मजबूत धार से बनते हैं और सारी मालूमात तारीख और वक्त के साथ एक रोल पर रिकॉर्ड होती है जो मुसलसल चलती रहती है। अगर कभी नुकसान होता है तो वो सिर्फ बाहर के हिस्से तक ही महदूद होता है और अंदर के डेटा को कोई नुकसान नहीं होता। 11 सितंबर के कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन 11 और यूनाइटेड 175 के दोनों कॉकपिट और डेटा रिकॉर्डर नहीं मिले। फिर भी FBI का दावा है कि उन्हें सदाम अल सुकामी का पासपोर्ट मिल गया जो धमाके के वक्त उसकी जेब से निकल उड़ा और उन्हें मैनहट्टन की सड़क पर पड़ा हुआ मिला। जरा सोचिए, कभी तबाह न होने वाले धात से बने हुए चार ब्लैक बॉक्स तो तबाह हो गए, लेकिन एक पासपोर्ट जो कागज नाम की एक नाजुक चीज से बनता है तबाह नहीं हुआ। ये बकवास कौन लिखता है? नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के स्पोक्समैन टेड लेपोटक्विज ने CBS को बताया कि ऐसा बहुत कम होता है कि हमें रिकॉर्डर नहीं मिलते। मुझे याद नहीं है कि इससे पहले कभी डोमेस्टिक हादसे में हमें रिकॉर्डर ना मिला हो। टेड की बात सही साबित हुई। निकोलस डेमासी, एक आग बुझाने वाले जिसने अपनी किताब बिहाइंड द सीन एट ग्राउंड जीरो में लिखा है कि एक बार मुझे FBI के एजेंट्स को उस जगह ले जाने की जिम्मेदारी दी गई ताकि वो दोनों जहाज के ब्लैक बॉक्स ढूंढे। सब मिलाकर चार बॉक्स थे जिसमें से हमें तीन बॉक्स मिले। अब किसकी बात पर यकीन किया जाए? FBI के डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का कहना है कि फ्लाइट 77 के डेटा रिकॉर्डर से एल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन और दूसरी मालूमात तो मिली, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर में कुछ खास चीज नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा कि कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर से कुछ नहीं मिला क्योंकि उसका डेटा खराब हो गया था। सिर्फ एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सलामत मिला और वो फ्लाइट 93 का था। अप्रैल 2002 को टेप सिर्फ उस जहाज के मुसाफिरों के घर वालों को सुनाया गया और वो भी एक एग्रीमेंट पर उनके दस्तखत लेने के बाद कि वो उसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करेंगे। हमको 9/11 कमीशन ये क्यों कहता है कि फ्लाइट 11 और फ्लाइट 175 के रिकॉर्डर नहीं मिले? डेविड फ्रिडमैन शिकागो के ओहायर एयरपोर्ट पे जहाजों का रिकॉर्ड रखते थे। उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा 10 अप्रैल 2003 को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 को देखा था और FAA के मुताबिक फ्लाइट 93 और फ्लाइट 175 अभी भी बाकी है, लेकिन फ्लाइट 11 और फ्लाइट 77 को तबाहशुदा दर्ज किया गया है। शायद आपको पता नहीं होगा कि 11 सितंबर को फ्लाइट 11 और 77 को कोई उड़ान भरनी ही नहीं थी। अगला सवाल, मोबाइल से किए गए कॉल क्या थे? तकरीबन सभी कॉल एक जैसे थे। उनमें से अक्सर सिर्फ दो जुमले कहने के बाद कट जाते हैं और फिर दोबारा कॉल आता है। फ्लाइट 11 की फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग ने भी मोबाइल से फोन किया था। 11 सितंबर कमीशन के मुताबिक वो कॉल 23 मिनट लंबा था, लेकिन सिर्फ 4.5 मिनट की ही बात रिकॉर्ड हुई।
I'm number 3 on flight 11.
Okay.
And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class. And we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Okay. Our number 1 is got stabbed. Our person is stabbed. Nobody knows who stabbed who. And we can't even get up to business class right now because nobody can breathe. Our number 1 is stabbed right now.
Okay.
And our number 5, our first class passengers, our first class
galley flight attendant and our purser has been stabbed.
क्या बेटियों की आवाज किसी ऐसी औरत की आवाज लगती है जिसका जहाज हाईजैक हुआ हो और जिसने अभी अभी तीन लोगों का खून होते देखा हो? पीछे से किसी के चीखने या चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? फ्लाइट अटेंडेंट मैडलाइन स्वीनी ने अपने ग्राउंड मैनेजर माइकल वुडवर्ड से 25 मिनट बात की। उसके मुताबिक 4 हाईजैकर्स थे। FBI ने कहा कि 5 थे। उसने कहा कि हाईजैकर्स 9 और 10 नंबर की लाइन में थे। FAA ने कहा वो सब 8 नंबर लाइन में थे। अपनी गुफ्तगू के आखिर में वो चीखती है, मैं बिल्डिंग देख रही हूँ, पानी, ओ गॉड। मार्क ब्रिगहम नाम के एक आदमी ने अपनी माँ एलिस को फोन किया। उसने कहा, माँ, मैं मार्क ब्रिगहम हूँ। आपने आखिरी बार कब अपनी माँ से बात करते हुए अपना पूरा नाम बताया है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। जहाज पर मौजूद तीन लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और कहते हैं कि उनके पास बम है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना माँ? मैं बोल रहा हूँ, मार्क। माँ कहती हैं, हाँ मार्क, हाँ मार्क, मुझे यकीन है। ये लोग कौन हैं? फिर किसी मर्द ने हल्की आवाज में कुछ कहा। 30 सेकंड के बाद फोन करने वाले ने दोहराया, मैं एयरफोन से बात कर रहा हूँ। उसकी माँ ने फिर पूछा, वो लोग कौन हैं? थोड़ी देर के ठहराव के बाद वो दोबारा पूछता है, माँ तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? थोड़ा वक्फा गुजरा और फोन कट गया। आज तक बेटियों के अमेरिकन एयरलाइंस को किए गए कॉल के अलावा कोई भी कॉल लोगों को सुनाया नहीं गया। लेकिन सच कहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई कॉल हुए ही नहीं थे। physics911.net की ड्यूडनी ने अपने तौर पर रिसर्च की। प्रोजेक्ट एचिलिस नाम के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने साथ कई तरह के मोबाइल फोन लिए और सेस्ना 172 फ्लाइट में 8000 फीट की बुलंदी पर सफर किया, ये जानने के लिए कि अलग अलग बुलंदी पर कितनी कामयाबी मिलती है। उनको 4000 फीट पर 0.4 कामयाबी मिली, 8000 फीट पर उन्हें 0.1 कामयाबी हासिल हुई और जब वो कमर्शियल जहाज की बुलंदी पर पहुंचे, यानी 32000 फीट पर उन्हें 0.006 कामयाबी हासिल हुई। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है? अमेरिकन एयरलाइंस ने भी हुकूमत का मुंह बंद कर दिया है। 15 जुलाई 2004 को अमेरिकन एयरलाइंस की एक कमर्शियल जहाज में मोबाइल स्टेशन लगाए जाने की वजह से उस जहाज के मुसाफिरों ने अपने मोबाइल से कॉल किए और रिसीव किए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो जमीन पर हों। सवाल, अमेरिकन एयरलाइंस ने 2004 में हजारों डॉलर्स उस टेक्नोलॉजी पर क्यों खर्च किए जबकि 11 सितंबर 2001 को जहाज पर मोबाइल इतनी अच्छी तरह काम कर रहे थे? वो मोबाइल के कॉल नकली थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसानी आवाज की नकल की जा सके? 1999 में न्यू मैक्सिको की लॉस अल्मोस लेबोरेटरी ने वॉइस मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी की इजाद का ऐलान किया। कॉलिन पावेल ने कहा, मुझे अगवा करने वाले मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। किसी भी शख्स की सिर्फ 10 मिनट की रिकॉर्डिंग से उसकी आवाज की नकल बनाई जा सकती है। स्टेनर इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने उस आवाज की एक कॉपी मांगी। अब चलते हैं हाईजैकर्स की तरफ। 14 सितंबर 2001 को जस्टिस डिपार्टमेंट ने 19 हाईजैकर्स के नाम की फहरिस्त जारी की, लेकिन 23 सितंबर को BBC ने बताया कि वलीद अल शहरी कैसाब्लैंका मोरक्को में जिंदा है और सही सलामत है। उन लोगों ने अब्दुल अजीज अल उमरी को भी ढूंढ निकाला। वो सऊदी टेलीकॉम में इंजीनियर है और डेनवर में पढ़ाई के दौरान उसका पासपोर्ट गुम हो गया था। इसी मजमून में FBI के डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर ने एतराफ किया कि बहुत से हाईजैकर्स की पहचान पर उन्हें शक था। तो उस फहरिस्त में से कितने हाईजैकर्स जिंदा निकले? कम से कम 9। वली अल शहरी जिंदा और सलामत है। मोहम्मद अल शहरी सऊदी अरब में जिंदा है। खालिद अल मेहजर मक्का में कंप्यूटर प्रोग्रामर है। सालिम अल हाशमी सऊदी अरब में यम्बू शहर के केमिकल प्लांट में काम करता है। सईद अल गमदी टूनिस में पायलट की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अहमद अल नामी सऊदी एयरलाइंस में एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर हैं। हमने वलीद और अब्दुल अजीज के बारे में तो बता ही दिया है। अब आखिर में मोहम्मद अता के बाप ने दावा किया है कि 12 सितंबर को उसके बेटे का फोन आया था। 20 और 27 सितंबर को मुलर ने CNN पर एतराफ किया कि उनके पास हाईजैकर्स की शनाख्त का कोई भी लीगल सबूत नहीं है। बहरहाल फ्लाइट 77 के मुसाफिरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फहरिस्त में भी हाईजेकर्स के नाम नहीं थे। तो अगर इस बात का कोई सबूत नहीं तो हाईजेकर्स अल कायदा से ताल्लुक रखते थे, या ये कि अगर वो लोग जहाज में थे ही नहीं तो अमेरिका ने किस बिना पर अफगानिस्तान पर हमला किया। हाँ हाँ याद आया, बिन लादेन की वो टेप 14 दिसंबर 2001 को अमरीकी हुकूमत ने बिन लादेन के नाम से एक टेप जारी किया जिसमें उसने 11 सितंबर के हमले का एतराफ किया था। अमरीका ने ये दावा किया है कि उन्हें ये टेप अफगानिस्तान के जलाल आबाद में एक घर में मिला, लेकिन इस टेप में बहुत सी चीजें गलत हैं। पहली ये कि टेप की क्वालिटी बहुत ही खराब है। दूसरी, इसी टेप में दिखाई देने वाला आदमी ना तो बिन लादेन की तरह दिखता है और ना ही उसकी हरकतें बिन लादेन जैसी है। एफबीआई की वेबसाइट के मुताबिक ओसामा बाएं हाथ से काम करता है, लेकिन इस वीडियो में वो दाएं हाथ से लिख रहा था। उस वीडियो के बिन लादेन को इन चार तस्वीरों से मिलाकर देखिए, क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है? जब तक अमरीकी हुकूमत पूरी तरह से ये साबित नहीं करती कि अल कायदा 11 सितंबर के हमले में शामिल थी, उस वक्त तक हमें इस बात पर यकीन नहीं करने का पूरा हक है। और अब आखिरी सवाल, अमरीकी हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? दिल थाम कर देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बैठे देख रहे हैं। पहला, लैरी सिल्वरस्टीन, जिसने जुलाई 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खरीदा था। 11 सितंबर के बाद सिल्वरस्टीन ने इंश्योरेंस कंपनी से $7.2 बिलियन की मांग की, लेकिन 6 दिसंबर 2004 को अदालत ने उसे सिर्फ $2.2 बिलियन देने का हुक्म जारी किया। दूसरा, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस और बोइंग ने स्टॉक पर लगाए गए पुट ऑप्शंस। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मुताबिक $2.5 मिलियन से ज्यादा की रकम पड़ी है जिसकी मिल्कियत का किसी ने कोई दावा नहीं किया है। रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की कॉनवर नाम की एक कंपनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से मिली 400 हार्ड डिस्क के डेटा निकालने के जिम्मेदार थी। कॉनवर को 32 अलग अलग कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से जो मालूमात हासिल हुई वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि 11 सितंबर को हुए स्टॉक के घपले में अंदर वालों का ही हाथ था। कॉनवर कंपनी के एक माहिर रिचर्ड वॉगनर कहते हैं कि उन्हें शक है कि कुछ लोगों को पहले से ही जहाज से हटाने का वक्त पता था ताकि $100 मिलियन से ज्यादा की रकम वहाँ से हटा दें। वो ये समझ रहे थे कि मेन फ्रेम के तबाह हो जाने के बाद उनके ट्रांजेक्शन का पता नहीं लगाया जा सकेगा। अपनी तहकीकात के बाद कॉनवर ने अपनी रिपोर्ट FBI के हवाले कर दी। कानूनी तौर पर जरूरी था कि FBI उस घपले के जिम्मेदारों को ढूंढने के लिए छानबीन करती, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। CNS न्यूज ने बताया कि 1993 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम धमाके हुए तो उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4 नंबर बिल्डिंग के नीचे कुवैत का $1 बिलियन से ज्यादा का सोना रखा हुआ था, लेकिन 11 सितंबर 2001 को वहां पर रखे हुए सोने की असली कीमत का कोई खुलासा नहीं किया गया। 1 नवंबर 2001 को टाइम्स लाइन ने खबर दी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से बड़ी तादाद में सोना बरामद हुआ था। मेयर रुडोल्फ जुलियानी ने ऐलान किया कि ग्राउंड जीरो से $230 मिलियन बरामद हुए, लेकिन कॉमेक्स मेटल ट्रेडिंग डिवीजन नाम की एक कंपनी में बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, चेस मैनहट्टन बैंक, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग की सोने की ईंटें रखी जाती थीं, जिसकी कीमत $950 मिलियन थी। ये तो सिर्फ एक कंपनी है। सवाल, तो ये सब सोना गया कहाँ? नवंबर 2001 में जो सोना मिला था उसे याद कीजिए। रूटर्स ने खबर दी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे मौजूद डिलीवरी टनल में एक 10 पहियों वाला ट्रक सोने से भरा हुआ मिला था, लेकिन وہاں سے کوئی لاش نہیں ملی۔ جیسے ہی مزدور سونے کے قریب پہنچے، ذمہ داروں نے گراؤنڈ زیرو کے قریب آنے جانے پر روک لگا دی۔ ان کے ساتھ ایف بی آئی اور خفیہ سروس کے ایجنٹ بھی ملے ہوئے تھے۔ ایک مزدور جسے ٹنل سے باہر جانے کا حکم دے دیا گیا تھا نے کہا، اگر میں وہاں نیچے جانے کی کوشش کرتا تو وہ لوگ مجھے گولی مار دیتے۔ بھاری مشین چلانے والے اور دوسرے مزدور 100 سے زیادہ بندوق والے افسروں کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 4 کا سونا ورلڈ ٹریڈ سینٹر 5 کے نیچے خالی ڈیلیوری ٹنل میں ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ لوگ ساؤتھ ٹاور سے دور بھاگ رہے تھے۔ سوال، انہیں کیسے پتا چلا کہ ساؤتھ ٹاور گرنے والا ہے، جبکہ ساؤتھ ٹاور کے اندر موجود آگ بجھانے والوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ٹاور گرنے والا ہے۔ 11 ستمبر کے بعد پریزیڈنٹ بش کو اجازت ہے کہ جو چاہیں وہ کہیں اور کریں، اور وہ سب 11 ستمبر کے بہانے۔ دی پیٹریٹ ایکٹ، ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ، افغانستان، عراق۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کو 11 ستمبر کی حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے، ایک جھوٹ جس نے ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے اور مارے جائیں گے، صرف اس لیے کہ ہزاروں کروڑ ڈالر کما سکے۔ کیا آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ آپ کو غصہ آنا بھی چاہیے۔ 11 ستمبر کا سچ جاننے اور تحقیقات کرنے کی ہر کوشش کا مذاق اڑایا گیا اور مخالفت کی گئی۔ حکومت کی بیان کی ہوئی کہانی کے خلاف سوال کرنے والے کو امریکی حکومت اور میڈیا کی طرف سے ڈھائی گئی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ ہم سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اور دنیا کے لوگ کب جاگیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ اب جبکہ آپ کو اس کا ثبوت بھی مل گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ کیا آپ امریکہ کی بتائی ہوئی کہانی کو آنکھ بند کر کے مان لیں گے، یا آپ اس معاملے میں اور جانکاری حاصل کریں گے؟ کیا آپ یہ باتیں دوسروں کو بتائیں گے یا کہیں گے اس سے میرا کیا لینا دینا؟ پوری دنیا کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن اسے اغوا القاعدہ نے نہیں کیا ہے اور نہ ہی اسامہ بن لادن نے، بلکہ کچھ ظالموں نے جو پوری دنیا پر اپنی دھوس جمائے رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جانکاری کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اجنبیوں تک پہنچائیں، سوال کریں، جواب مانگیں، یا جو بھی اپنے بس میں ہو وہ کریں۔